بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. جب ہم نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں موت کا فیصلہ کر لیا تو لوگوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی، مگر زمین کے کیڑے کے ذریعے یا ان کی موت کے بارے میں اطلاع نہیں کی کسی نے مگر زمین کے کیڑے نے، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ جب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام گر گئے تو جنات کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس رسوائی والی سزا میں نہ ٹھہرے رہتے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ بنانے کی بنیاد ڈالی۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو مشہور ہیں وہ پہلے بانی ہیں مسجد اقصیٰ کے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد بنانی شروع کی تھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اصل کام ہوا، لیکن یہ حضرات مجدد ہیں، نئے سرے سے اس کو تعمیر کیا، پہلے بنیاد ڈالنے والے یہ حضرات نہیں ہیں۔ جس طرح کعبہ کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے ہیں جنہوں نے کعبہ بنایا، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کعبہ انسانوں میں سب سے پہلے بنانے والے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مجدد ہیں، نئے سرے سے اس کو تعمیر کیا جبکہ وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اسی طرح مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس کی تعمیر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ابتدا ہوئی، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اصل تعمیر ہوئی، اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا بانی سمجھا جاتا ہے، لیکن بانی نہیں، نئی تعمیر کا بانی۔ اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام جنات سے کروایا۔ کام مکمل ہو بھی گیا تھا اور باقی بھی تھا، دونوں باتیں ہیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے، کوئی بڑی تعمیر ہوتی ہے، تو اس میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، تعمیر بن گئی ہو گئی، باہر سے کام ہو گیا لیکن ابھی اندر کے کام باقی ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی واقعہ پیش آیا کہ تعمیر ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے شکرانے میں بہت بڑی دعوت بھی کی۔ یہ تاریخی روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے اور مفسرین نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے شکرانے میں بہت بڑی دعوت بھی کی تھی، اور اسی طرح سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ، جو بھی اس مسجد میں داخل ہو صرف نماز کی نیت سے یہاں آئے اس کے گناہوں کو بخش دینا، اور بھی دعائیں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی تھیں۔ لیکن یہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی ان کے حیات میں، یہ بھی صحیح ہے اور ظاہر ہے تو قرآن کی آیت ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ تھا کہ اصل تعمیر بظاہر مکمل ہو گئی تھی لیکن تعمیر کا بہت کام باقی بھی تھا، تو اس لیے تعمیر کا ہو جانا ایک الگ بات ہے، اس کے تمام کاموں کا مکمل ہو جانا الگ بات ہے، یا تھوڑا تعمیر کا کچھ حصہ ہو گیا ہوگا اور باقی بڑی تعمیر کا حصہ باقی تھا جو سلیمان علیہ السلام نے نقشہ بنا کر دے دیا تھا۔ من جانب اللہ سلیمان علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ کا آخری وقت آ چکا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ تعمیر مکمل ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو وہ جنات کو قابو کر سکتا اور اتنی بڑی وہاں تعمیر کرا سکتا، بڑے بڑے پتھر تھے جو لانے تھے، عام انسانوں کی طاقت سے باہر بات ہے، بڑے بڑے پتھر بھاری، اور وہ بھی پہاڑی علاقہ، جو وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہاڑی علاقے پر ہے، اونچائی پر واقع ہے، تو وہاں پر اتنے بھاری پتھروں کو اٹھا کر لانا اور تعمیر کرنا یہ سب کام جو ہے اس جگہ کوئی آسان نہیں تھا۔ اگرچہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بڑی فوج تھی، بڑی طاقت تھی، لیکن انتقال ہو جاتا تو پھر کام رک جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کے لیے کوئی نظم فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انتظام فرمایا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شیشے کا ایک عبادت خانہ بنایا جس کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اور لاٹھی کے سہارے وہاں کھڑے ہو گئے، ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، گویا کہ عبادت میں کھڑے ہیں اور مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، گویا اپنی عبادت میں بھی ہیں اور سامنے نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قیام کی حالت میں ان کی روح ملک الموت نے قبض کر لی اور اسی طرح وہ کھڑے رہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ گئے تھے، بیٹھے تھے جیسے تخت پر بیٹھے ہوں، اس طرح بیٹھے تھے، اور بیٹھے ہوئے انسان تو پھر بیٹھا ہی رہے گا، اور تھوڑی کے نیچے عصا رکھ لیا، جیسے اس پر ٹیک لگا کر آگے کی طرف تھوڑی جو ہے وہ عصا کے اوپر رکھ لی اور اس پر سہارا لگایا اور روح قبض ہو گئی۔ رعب ایسا تھا کہ جنات کی ہمت نہیں تھی کہ قریب آ کر دیکھتے، وہ اپنے کام میں لگے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں، وہ کام میں لگے رہے۔ اور اسی طرح ایک طویل عرصے تک وہ کام کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ گرے کیسے؟ اس لیے کہ لاٹھی زمین کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اس زمین کے ساتھ لاٹھی رکھی ہوئی تھی، وہاں ایک کیڑا تھا، دیمک کی طرح جو کیڑا ہوتا ہے، کیڑا تھا، وہ لاٹھی کو اندر سے کھاتا رہا۔ اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، اندازہ لگایا گیا کہ کتنے عرصے تک لاٹھی کو اس نے کھایا ہوگا کہ اتنی کھوکھلی ہو گئی کہ ٹوٹ کر گری ہے۔ تو اندازہ لگانے سے معلوم ہوا کہ تقریباً 1 سال ہوا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا، اس اندازے سے پتہ چلا کہ تقریباً 1 سال پہلے سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا، چونکہ اس زمانے میں طویل عبادتوں کا ویسے بھی سلسلہ ہوتا تھا، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، اپنی عبادت میں بھی لگے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ یہ اس آیت میں اس کو بیان کیا ہے۔ پھر آیت کو ہم دیکھتے ہیں، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان پر موت کا وقت آ چکا ہے اور روح قبض کر لی، تو ان کی دعا اور درخواست پر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا کہ وہ لاٹھی کے سہارے ٹھہرے رہے، چاہے کھڑے تھے یا بیٹھے تھے۔ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، تو لوگوں کو نہیں خبر دی سلیمان علیہ السلام کی وفات پر، سلیمان علیہ السلام کی وفات کی اطلاع لوگوں کو نہیں دی مگر زمین کے کیڑے نے، ویسے تو ویسے ہی ٹھہرے رہتے، वो तो ज़मीन में जो कीड़ा था और दीमक, वो उसको खाती रही वो कीड़ा। जो ज़मीन वो लकड़ी को खाता है, वो खाता रहा खाता रहा, तो उसके खाने की वजह से लकड़ी कुछ बोसीदा हो गई, अंदर से खोखली हो गई और टूट कर गिरी, तो पता चला, वरना पता भी नहीं चलता। और पता नहीं कितना अरसा ठहरे रहते। ये तो अल्लाह का निज़ाम था कि तामीर मुकम्मल हुई और सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। तकुलु मिन साअता, जो आपके आसा को वो कीड़ा खा रहा था। जब गिरे तो उससे एक फ़ायदा क्या हुआ? इतने अरसे तक ठहरे रहने का एक फ़ायदा तो बड़ा यह हुआ कि मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल हो गई। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हुआ, अब ये आजकल जो मसला चल रहा है, ये कहते हैं कि ये तो हमारी जगह है, वहाँ जो इसराइली हैं वो कहते हैं हमारी जगह है। कैसे? इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह को फतह करना चाहते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तो वो लोग नहीं गए थे, वो तो मशहूर है। इन्हीं जो उस ज़माने के बनी इसराइल थे उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं, हम तो लड़ने नहीं जाते, आप जाना चाहें इधब अंत व रब्बू का फ़कातिला, कुरान ने बयान किया, इधब अंत व रब्बू का फ़कातिला इन्नहा हुना क़ाइदुन, आप अपनी तरफ जा लड़ लें, सुलह फतह तो आपके आपके आपको अल्लाह ताला दे ही देंगे, आपको फतह मिल जाएगी तो हम आ जाएंगे, हम इस तरह हम लड़ने वाले लोग नहीं कि इनसे जाकर लड़ें, हम अपनी जान खतरे में डालें। मूसा अलैहिस्सलाम उनसे तंग आ गए। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से उनको सज़ा भी दी गई बनी इसराइल को। उसके एक मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, एक अरसे के बाद फिर बनी इसराइल को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने का मौका मिला, फतह हुई। कुछ अरसा वो वहाँ रहे, तकरीबन 100 साल, तकरीबन 100 साल वो वहाँ रहे। बस यहूद का वहाँ पर रहना ये 100 साल का ज़माना है। उसके बाद फिर हालात आते रहे, कोई आया उन पर हमला किया निकाल दिया, उसके बाद हालात आते रहे, बुख्त नसर आया उसने हमला किया, नसारा की हुकूमत वहाँ पर रही, यहूद की हुकूमत वहाँ तकरीबन 100 साल। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये कहते हैं कि ये भी हमारे हैं, तो सबके हैं, सिर्फ उनके नहीं हैं, वो तो हमारे भी हैं। हम उनको मुवाहिद मानते हैं, नबी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन इनकी किताबों में लिखा हुआ है सुलेमान अलैहिस्सलाम तो आखिर में मुशरिक हो गए थे वलियाज़ु बिल्ला, तो ये तो उनको नहीं मानते। बहरहाल मस्जिद अक्सा ये हमारा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। शुरू दौर में मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म यह था कि मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज़ पढ़नी है। मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे तो इस तरह पढ़ते थे कि सामने काबा भी होता था और फिर मस्जिद अक्सा भी, दोनों तरफ रुख हो जाता था। मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ़ ले गए तो फिर ज़ाहिर है कि दोनों में से एक हो सकता है, इसलिए कि मस्जिद अक्सा नॉर्थ की तरफ है, मक्का मुकर्रमा साउथ की तरफ है। मदीना मुनव्वरा जाने के बाद एक अरसे तक, सन 2 हिजरी तक मुसलमानों का क़िबला मस्जिद अक्सा की तरफ था। उसके बाद फिर तहवील क़िबला का ऐलान हुआ, सन 2 हिजरी में काबा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया, जो कुरान करीम के दूसरे पारे में है, वल्ली वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, अब आप मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख कर लीजिए। तो बहरहाल हमारे लिहाज से वो काबिल एहतराम जगह है। यहूद उन पर चूंकि हमेशा मार खाते रहे और मुख्तलिफ जगहों से उनको भगाया गया मारा गया, तो उनको हमेशा से ये ख्याल था और इनकी कोशिश थी कि कोई एक जगह हमारी होनी चाहिए जहां हम अपनी बुनियाद बनाएं। यहूद को एक इलाके की, एक मुल्क की ज़रूरत है। उन्होंने ये सोचा कि हमें जो जगह चाहिए, बेहतरीन जगह हमारे लिए हो सकती है, वो फ़लस्तीन है। मस्जिद अक्सा वो हमारा मोहतरम जगह है, हमारी जगह है। हमारी जगह कैसे, वो तो सिर्फ 100 साल वहाँ रहे थे। हमारी जगह है, हम आ रहे हैं। खिलाफत उस्मानिया जब तक कायम थी, चाहे वो जिस दर्जे में भी खिलाफत थी, लेकिन बहरहाल उसका कुछ न कुछ ज़ोर था, रौब था। सुल्तान अब्दुल हमीद जो उनका हाकिम था, उनके सामने बहुत कोशिश की गई। इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से फ़लस्तीन इनके हवाले कर दिया जाए, या चलो ठीक है कुछ वहाँ पर इलाके इनको दे दें कि वो आबाद हो जाएं। वो समझ सकते थे कि अच्छा, जब वो कुछ इलाके में आबाद होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करना शुरू करेंगे, और इनकी शरारतों को वो जानते थे। वो बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आए। बहुत बड़ी रकम, बहुत पैसों की पेशकश की गई, बहुत कुछ रिश्वत पेश की गई, नहीं कबूल की। सुल्तान अब्दुल हमीद की वफ़ात इनके लिए फतह थी, गोया अब इनके लिए रास्ता खुल गया। और मुख्तलिफ जगहों पर चूँकि मुख्तलिफ हुकूमतें कायम कर दीं, जब तक खिलाफत थी किसी दर्जे में एक जोड़ की शक्ल तो थी मुसलमानों में। जब वो ख़त्म हो गया, जो भी बड़ी इसकी तवील तारीख है, जब वो ख़त्म हुआ तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हुकूमतें कायम हुई, और फ़लस्तीन के इलाक़े में बरतानिया ने अपना ज़ोर जमाया। वो कुछ अरसे तक वहाँ रहे, फिर 1948 में, 1948 में यहूद को काफ़ी हद तक वहाँ आबाद किया फ़लस्तीन के इलाक़े में, और बहुत सी चीज़ें उनके हवाले की। उनके हवाले करने के बाद 1948 तक बहुत सी चीज़ें उनके हवाले करके बरतानिया जो है वो वहाँ से निकल गया, और इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम यहाँ पर अपनी हुकूमत, ये यहूदियों को जो अपनी जगह आबाद करनी थी, अपना इलाका छोटा सा आबाद करके उन्होंने कहा ये हमारा मुल्क है, हमारी हुकूमत है। नए नाम से एक हुकूमत उस हुकूमत में फ़लस्तीन में कायम की, जिसका नाम रखा इसराइल। ये कोई चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था ये 1948 में। उसके लिए कितना जुल्म हुआ वो एक तारीखी तफसील है कि लोगों को बेघर किया गया, लोगों को बेघर किया गया, लोगों को कत्ल किया गया, हटाया गया, मारा गया, कितने लोग हिजरत करके मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को वहाँ से जाना पड़ा। इनके इलाके आबाद हो गए, इनके पास ऊपर से उनको हिम्मत अफज़ाई की जा रही थी, उनको उनकी मदद की इमदाद की जा रही थी। यही सिलसिला चलते 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 तारीख़ी लिहाज से लोगों ने नक्शे बनाए हैं कि पहले क्या था, पूरा फ़लस्तीन था, फिर 48 में इसराइल थोड़ा सा हिस्सा बना और बाकी फ़लस्तीन था। फिर ये लोग बढ़ते बढ़ते और बढ़ते रहे, मुसलमानों को कुछ इलाकों में महदूद कर दिया जैसे जेल में हो, आसपास हर तरफ फेंस लगा दी, हदूद बना दी कि अच्छा इन इलाकों में ये बंद रहेंगे, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, गोया कि जेल में हो। जेल खुली जगह, अपने घर से निकलें बस इस इलाके से बाहर नहीं निकलेंगे, निकलना हो तो इन इसराइलियों की इजाज़त के बगैर नहीं निकल सकते। चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई, हर चीज़ महंगी हो गई, वसाइल कम हो गए, सहूलतें कम हो गई, बहुत से मुश्किलात का सामना होता रहा और जुल्म होता रहा, कत्ल होते रहे, बच्चों को मारते रहे, अंदर अंदर की खबरें बाहर कभी निकली कभी नहीं निकली, मीडिया सब एक तरफ की बातें बयान करता है, ये हालात चलते रहे। इन्हीं मजालिम को, ये 48 से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो मजालिम का, मैंने उसकी मुझे पूरी ये इसके पीछे बहुत कुछ तफसीलात हैं। बहरहाल उस वक्त से जो मजालिम का सिलसिला शुरू हुआ था, तो ये 50 साल से ज़्यादा की तारीख़ है, तकरीबन 70 साल की तारीख़ है, जिसको जुल्म बर्दाश्त करते करते ये लोग मुख्तलिफ मौके पर हमले करते रहे, और जुल्म के इंतकाम रिएक्शन के तौर पर कुछ ना कुछ करते रहे। और मीडिया में ये आया कि देखो ये मुसलमान हैं, ये फ़लस्तीनी हैं, ये इन लोगों को परेशान करते हैं, तो इसके बदले में इनको ये करना पड़ा। किसी के घर में आकर ये कहना यहाँ से निकल जाओ, अभी अभी कहाँ जाए, बस चले जाओ, जहाँ भी जाना है रास्ते में जाओ, यहाँ से घर से निकल जाओ, ये हमारा है। ख़ानदानी एक शख्स एक ज़मीन का एक मकान का मालिक है, वो वहाँ रहना चाहता है, उसका हक है, उसको ये कहा जा रहा है कि निकल जाओ, तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं है। और दुनिया के ह्यूमन राइट्स वाले, इंसानी हकूक़ वाले तमाशा देख रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो इनकी जगह है, इनकी जगह कहाँ से हो गई, ये तो कनाडा और अमेरिका वाले भी अगर इस कानून को माने तो रेड इंडियन कह सकते हैं कि ये मुल्क हमारा है, तुम लोग सब निकल जाओ। इसे कि ये आए थे पहले, इनको तो फिर भी हक है, इसे कि पहले ही वो आए थे तो वो कह सकते हैं तुम लोग बाकी सब निकल जाओ, हमारा मुल्क है। तो इसलिए ये अपने हक में अगर बात आएगी तो वो कहेंगे नहीं, और इन लोगों को तो बेचारों को बिल्कुल ही बेदखल कर दिया है मुल्क के कानून और हर चीज़ से। बहरहाल ये अभी जो कुछ अरसा, अभी जो अक्टूबर ही के महीने में जो हमला हुआ था तो ये उसी के रद्द अमल में हुआ था। लोग कहते हैं कि उनको क्या ज़रूरत थी हमला करने की, वो जो मजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं एक अरसे से लोगों को पता ही नहीं था, अब लोगों के सामने आ रहा है कि ये कितने जालिम, कितना जुल्म करते हैं ये लोग। एक बात यह याद रहे कि ये किसी मज़हब के ख़िलाफ़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहूदियों के ख़िलाफ़ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये वहाँ के बसने वालों के बारे में बात कह रहा हूँ। यहूद में मुख्तलिफ़ जमातें हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, और उनमें बहुत से वो हैं जो उनके ख़िलाफ़ हैं, जो इसराइल में हो रहा है वो उसके ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ये यहूद मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, किसी जगह हम यहूदियों को देखें तो ये नहीं कि अच्छा ये लोग भी उन्हीं के साथ, नहीं, वो अलग हैं ये अलग हैं। जैसे मुसलमानों में भी मुख्तलिफ़ फ़िरक़े, मुख्तलिफ़ जमातें हैं, मुसलमानों में अगर कोई गलत काम करता है तो तमाम मुसलमानों की तरफ उसको मंसूब नहीं किया जा सकता। बाज़ लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कादियानी होते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, शिया, ये तमाम अगर इस तरह की कोई हरकत करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उसको तमाम मुसलमानों को उसका ज़िम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता। यही बात वहाँ पर भी है। बहरहाल तो वहाँ पर ये हालात हैं, और ज़ाहिर है अब जो जुल्म हो रहा है वो सबके सामने है, और अगरचे उसको पूरी तरह मीडिया पे नहीं लाया जा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे तो ये सब बातें आ रही हैं। हम क्या कर सकते हैं इन हालात में? वो इस हफ्ते बात हुई थी, हफ्ते के रोज़, कि हम क्या करें इन हालात में। एक तो ये है कि अपने आमाल को हम दुरुस्त करें, तौबा इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें, और उनके लिए दुआओं का अहतमाम करें। दुआओं में मकबूल अवकात, जो दुआओं के मकबूल अवकात होते हैं, उन दुआओं का भी ख़ास अहतमाम करें। वो ऐसे असबाब और मौाक़े जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, उन अवकात का, उन असबाब का अहतमाम करें, दुरूद शरीफ का अहतमाम करके दुआ मांगें। हम अपनी हद तक जो कर सकते हैं वो हम करें। अल्लाह ताला की रहमत से बईद नहीं है कि दुनिया भर में जो मज़लूमों के हक़ में दुआएँ हो रही हैं, अल्लाह ताला ज़रूर इनको कबूल फ़रमाएंगे। बहुत सी बशारतें भी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन मज़लूमों के हक़ में। किसी ने ख्वाब देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गज़ा के इलाक़े में तशरीफ़ फरमा है, जो इमारतें गिरी हैं, मलबा है, उसको उठाकर अंदर से जो लोग दब गए हैं उनको निकाल रहे हैं, और जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ फेरते हैं वो ठीक हो जाता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ होना और उनके मदद करना, उनका साथ देना, ये उनके लिए बहुत बड़ी बशारत, सआदतमंदी की बात है। हम तो गोया मुर्दा बैठे हुए हैं, ज़िंदा कौम तो वो हैं जो बेचारे दीन की खातिर इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। और भी बहुत सी बशारतें हैं जो लोगों ने देखी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हम किसी दर्जे में अगर कुछ कर सकते हैं तो कम से कम दुआ, दुआ से तो पीछे ना हटें कि किसी दर्जे में हम भी मज़लूम का साथ देने वाले बन सकते हों, तो अल्लाह ताला हमें दुआ ही के ज़रिए से अगर उसमें शामिल कर दें कि उन पर कुछ रहमत का नुज़ूल होगा। कम से कम अज़ाब, मज़लूमों की मदद न करने पर जो अज़ाब किसी पर आ सकता है उससे हम बच जाएँ। तो खैर, सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा की तामीर करवा रहे थे, इंतकाल हो गया, एक साल तक उस हाल में रहे, और जब लाठी अंदर से खोखली हो गई, गिर गए, तो पता चला कि अच्छा, यह तो 1 साल पहले इंतकाल हो चुका था। इससे एक फ़ायदा यह हुआ कि मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल हो गई। दूसरा फ़ायदा यह हुआ कि लोगों में यह बात फैलाई जा रही थी और लोग ये समझते थे कि जिन्नात गैब को जानते हैं। जिन्नात खुद भी उस गलतफहमी में मुबतला थे कि हमें गैब की खबरें मालूम हो जाती हैं। वैसे इसके पीछे कुछ है हकीकत, वो ये है इसकी हकीकत कुछ ये है कि क्या वजह है कि लोग ये समझते हैं कि जिन्नात को गैब की बातों का इल्म है। इसकी वजह यह है कि जिन्नात के लिए अल्लाह ताला ने एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान कर दिया। वो तवील सफ़र थोड़ी देर में तय कर सकते हैं। तो अब इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के बारे में, कोई ख़ास इलाके के बारे में कुछ पूछता है, मैं वहाँ फ़ोन कर लेता हूँ, फ़ोन से मालूम कर लेता हूँ, बता देता हूँ, अच्छा ये है, कोई मुझे समझता है मैं आलिमुल गैब हूँ, इसलिए कि गैब की बात वहाँ की मैंने यहाँ बता दी। क्यों? इसलिए कि मेरे पास फ़ोन था। और अब तो और भी असबाब बन गए, फ़ोन है, वीडियो है, कितनी चीज़ें हैं। तो अब तो बहुत से लोग इस माना के लिहाज से देखे तो बहुत से लोग गैब को जानने वाले हो गए, इसलिए कि वो गैब गैब नहीं रहा, अब वो तो वीडियो की शक्ल में, फ़ोन की शक्ल में सामने हो गया। वो गैब नहीं है, वो तो सामने है, वो तो शहादा है। तो जिन्नात चूँकि आना जाना उनका तेज़ी से हो जाता है, तो और उनके रबते होते हैं, ठीक है, यहाँ से उसने उससे मालूम कर लिया, वहाँ से पूछ लिया और ख़बरें मालूम कर लेते हैं। सुनने वालों को ऐसा लगता है कि अच्छा, गैब की बात बता दी। तो बहरहाल एक फ़ायदा बड़ा लोगों के जहनों में जो गलतफहमी फैलाई जा रही थी कि जिन्नात गैब की बातें जानते हैं, वो बिल्कुल साफ वाज़ हो गया कि दूर के क्या करीब के हैं, सामने सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हैं, वफात पा चुके हैं, उनको पता नहीं इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं। फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यालमून अल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए तो जिन्नात को यह बात अच्छी तरह मालूम हो गई और लोगों के सामने बात वाज़ हो गई कि अगर वो गैब जानते, अगर गैब की बातें जानते, तो इस तरह मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। ये अज़ाबिल मुहीन कौन सा है? अज़ाबिल मुहीन का लफ्ज़ी तर्जुमा होता है रुसवाई वाली सज़ा। एक तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहती में काम करना एक होता है, खिदमत के जज्बे से करना होता सवाब है, एक होता है ज़बरदस्ती करना पड़ेगा वरना सज़ा मिलेगी, तो ये उनके लिए रुसवाई है। खिदमत के जज्बे से करना, सवाब की नीयत से करना सआदत है। वही काम ज़बरदस्ती कर रहा है, सवाब का मकसद नहीं है, सवाब मकसूद नहीं है, तो फिर वो रुसवाई है। और ज़ाहिर है मुशक्क़त वाले काम कर रहे हैं तो सज़ा भी है। तो अल अज़ाब अल मुहीन, ये रुसवाई वाली सज़ा के, अच्छा पत्थर उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं, मुशक्क़त उठा रहे हैं, इतने मुशक्क़त वाले काम कर रहे हैं, तमाम काम जो कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? इसलिए कि ये समझ रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हयात हैं और हमें देख रहे हैं, हालांकि वो इंतकाल कर गए थे। ये बहरहाल आयत का मफहूम हो गया और ये एक अजीब वाकया जो पेश आया था उसको अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया है। आगे एक नई बात शुरू होती है, तो हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर यहाँ से पढ़ेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।